and not enough. What in nominee's angel? God, मुझमें ये सकत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह कह सकूं, बस वो तो हुसैन थे। लाशों पर लाशें उठा रहे थे और शुक्र खुदा बजा रहे। दुनिया देखे सुने समझे मुतालआ करे, हुसैन की मारिफत हासिल करे। कौन है हुसैन? सैयदुश्शुहदा, सैयद शबाब अहले जन्नत, रूह जान रसूल, हुज्जत खुदा हुसैन, वली खुदा हुसैन, इंसान कामिल हुसैन। वो हुसैन जिसका जिक्र तरह तरह से कुरान मजीद में आया है। आपने ये जो 10 रातें बसर की हैं और ये जो आज की रात आने वाली है, इन सब रातों और दिनों की कसम कुरान में खाई गई है। वल फजर वल लयाल अशर वल शफ वल वत्र वल लैल इज़ा यस्र हल फी ذلك قسم الذي حجر। ये किसी और का बयान नहीं है, ये कौल सिर्फ शिया उलमा ने नहीं नकल किया है, अल्लामे अहले सुन्नत जो उनके यहाँ इमामुल मुफस्सिरीन माने जाते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी, उन्होंने अपनी तफसीर कबीर में यह कौल नकल किया है कि सूरह फजर में जो शब रोज की कसम खाई गई है, ये शब रोज एक कौल ये है कि ये ज़िलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन और 10 रातों की कसमें हैं, और दूसरा कौल ये है कि ये माह मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों और 10 रातों की कसम है। ये फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा। ये शब रोज बहुत अहम शब रोज है, पूरे सिलसिले शब रोज पर यानी गरीबान अजल से लेकर दामान अबद तक सदियां गुजर गई और सदियां अभी गुजरेंगी, लेकिन उन तमाम सदियों पर ये शब और रोज मुहीत रहेंगे। जरूर आप गिरिया फरमाएंगे, आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, गिरिया फरमाएंगे, मगर मैं आपको सोचने की दावत भी देना चाहता हूं। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हर लम्हा इंसान फिक्र करता रहता है। बहुत सी चीजें हम देखते हैं और बहुत सी चीजें मौजूद होती हैं, मगर हमें नजर नहीं आती। ये एक साइंसी हकीकत है, ये एक हकीमाना फलसफियाना हकीकत है। इसलिए अगर कोई ऐसी निगाह हो, कोई ऐसी नजर हो जो आम तौर पर नजर ना आने वाली चीजों को भी देख ले और नकल करे, तो उसे झुटलाना नहीं चाहिए। मुमकिन है कोई चीज हमें नजर आ रही हो, आपको नजर ना आ रही हो, मुमकिन है कोई चीज आपको नजर आ रही हो, हमें नजर ना आ रही हो, और मुमकिन है कोई चीज हमें अपनी जाहिरी आंखों से नजर ना आ रही हो मगर हमारी आकल उसके वजूद की गवाही दे रही हो। इसलिए जो नामरई हकीकत, जो इन आंखों से नजर नहीं आती, उन हकीकतों का इनकार नहीं करना चाहिए। इंसान को जेब नहीं देखा। अब ये कोई तफसीली बहस और गुफ्तगू का मकाम नहीं है। आपकी ज़हानतों पे भरोसा करके एक छोटा सा जुमला कह रहा हूं जो बच्चों को भी याद रह जाएगा, जवानों को, बड़ों को भी याद रह जाएगा। हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हमें बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जो इन आंखों से नजर आ रही हैं, और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर मगर इन आंखों से नजर नहीं आ रही हैं। आप सांस ले रहे हैं ना, यानी यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है मगर ये ऑक्सीजन आपकी आंखों से नजर यहाँ मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, एक मादी हकीकत है मगर आंखों से नजर नहीं आ रही है। क्यों? इसलिए कि उसका वजूद लतीफ है। हमारी आंख कसीफ चीजों को देखने की आदी है, लतीफ चीजों को देखने की सकत नहीं रखती। जो चीजें लतीफ हैं, जिनमें शफाफियत पाई जाती है, लतीफ हैं, जिनमें ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, जो चीजें जितनी एब्स्ट्रैक्ट होती जाती है चीज, वो इस आंख से काबिले रोयत नहीं रह जाती। जब यहां इस मजलिस में कुछ चीजें हैं जो नजर आ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो नजर नहीं आ रही हैं, अब अगर जाहिरी निगाह रखने वाला मुअर्रिख तारीख लिखे तो यकीनन वो उन चीजों को लिखने से माजूर रहेगा जो उसको आंखों से नजर नहीं आ रही हैं। यही सूरत करबला की है। करबला में जाहिरी तौर पर जो फौजें थी वो अपनी जगह, लेकिन ये जो मरसिया निगार, ये जो नौहा खान मासूमीन से वारिद रिवायतों को नकल करते हैं, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। करबला में कितने मलाइका थे मौजूद, करबला में कितने जिन थे मौजूद, और करबला में आदम ता खातम तमाम अंबिया थे मौजूद। किसी में जुरत नहीं है कि इनकार करे। करबला में जब हुसैन घोड़े से जमीन पर आए हैं, ज़हरा भी मौजूद थी, मुस्तफा भी मौजूद थे, अजरकुम अल्लाह। ये रिवायत भी सिर्फ शिया मुसन्निफीन की किताबों में नहीं आए, बरादराने अहले सुन्नत की किताबों में बकसरत हवाले मौजूद हैं, जिन्होंने जनाब उम्मे सलमा, उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब बयान किया है, जनाब इब्ने अब्बास का ख्वाब बयान किया है, जनाब उम्मे सलमा ने भी देखा, जनाब इब्ने अब्बास ने देखा, और क्या देखा जनाब इब्ने अब्बास ने देखा, کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے. آپ کی زلفیں گرد و غبار میں اٹی ہوئی ہیں، قبا مبارک پر لہو کے نشانات ہیں. ہاتھ میں ایک ظرف ہے. ابن عباس کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو کس عالم میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا، ابن عباس میں کربلا سے آ رہا ہوں. دیکھو اس ظرف میں میں نے شہدا کا لہو جمع کیا، اس میں اصغر کا لہو ہے، اکبر کا لہو ہے، حسین کا لہو. کس میں طاقت ہے جو کربلا کو بیان کر سکے؟ اجرکم علی اللہ، صرف ظاہری تاریخ پر بھروسہ کر کے علم و معرفت کی حدیں نہ کھینچ دیں. یہ تاریخ ہیں جو ایسے مورخین نے لکھی ہیں کہ جنہوں نے ظاہر کو بھی پورے طور پر نہیں دیکھا، اور ظاہری حقائق کو جنہیں دیکھا انہیں بھی پورے طور پر بیان نہیں کیا. ان پر اعتماد کر کے حقائق کا انکار نہ کریں، تحقیق کا سفر جاری رکھیں. انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ حقیقت رسی کا سفر طے کرے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. کربلا میں 2 محرم کو حسین آئے، آقا کا خیمہ دریا کے کنارے نہیں لگانے دیا دشمنوں نے. 4 محرم کو دشمن فوجوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا. 9 محرم کو ایک بڑی فوج شام سے کربلا پہنچی، شام سے کربلا پہنچی، کوفے سے نہیں، شام سے کربلا پہنچا. جب شام کا لشکر کربلا پہنچا ہے تو عمر ابن سعد خوش ہوا ہے کہ اب میں اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ آقا حسین کی طاقت کا بھی اسے اندازہ تھا. آپ تو مسلسل ذکر شہداء سنتے رہتے ہیں، آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت سنی ہوگی. ایک مسلم نے کیسا معرکہ برپا کیا تھا کوفے میں، سینکڑوں کا لشکر ایک طرف تھا اور مسلم ایک طرف. یہ تو ظاہری تاریخ ہے، یہ تو وہ تاریخ ہے جو دشمنوں نے بھی لکھی ہے. کربلا میں جو 72 شہداء جن کے نام عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں مسلم سے کم شجاعت تو نہ تھی. اور بوڑھوں میں بھی جو ظاہری طور پر بوڑھے تھے، کیسی شجاعت پیدا ہو گئی تھی ان میں، ایسی شجاعت کی مثالیں کربلا میں ملتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی اور نہیں، حسین نے خود گریہ کیا ہے. آقا حسین جب گریہ کرتے ہیں تو یہ بے صبری کا گریہ نہیں ہے. گریہ کے اسباب کتنے ہیں اس پر بھی گفتگو کا اس وقت تو موقع نہیں ہے، مگر میں ایک صحابی رسول کی شہادت بھی ذکر کروں آج. صحابی رسول، وہ صحابی رسول جس کا تمام علماء اسلام نے علم رجال کی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، حضرت انس ابن حارث، جنہوں نے خود یہ حدیث روایت کی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں نے سنا کہ آقا نے فرمایا، میرا بیٹا حسین کربلا کے بن میں شہید ہوگا. تم میں سے اے میرے اصحاب، تم میں سے جو بھی درک کرے اس زمانے کو، جو بھی حسین کی آواز سنے، اس پر حسین کی نصرت واجب ہے. یہ حدیث علماء اسلام نے نقل فرمائی ہے. یہ انس ابن حارث ہیں، انہوں نے سنا کہ حسین کربلا جا رہے ہیں، یہ بھی پہنچ گئے کربلا. بامیں سفید ہیں، سر کے سارے بال سفید، محاسن سفید، کمر جھکی ہوئی ہے، یہ پکوٹے ایسے لٹک گئے ہیں کہ بظاہر دور تک نہیں دیکھ سکتے، نزدیک نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑھاپے کی کیفیت ہے. روز عاشور آقا حسین کے پاس آئے ہیں، لیکن آنے سے پہلے کیا کیا، ایک رومال لیا، بھووں کو اوپر اٹھایا، کس کے رومال باندھا تاکہ نظر آئے، اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ نیزہ ہے نا، اس نیزے کو میری پشت سے لگا کے میری کمر باندھ دو اور سینہ باندھ. اور اس کے بعد آقا حسین کے پاس آئے ہاتھ میں تلوار لے کر، یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے، یا ابا عبد اللہ، یا حسین، اجازت ہے کہ میں آپ کی طرف سے جنگ و جہاد کروں؟ مورخین کا جملہ ہے، آقا حسین نے یہ شان دیکھی اور گریا فرما، جزاک اللہ یا ناس خیر الجزا. کیا کیا مناظر ہیں کربلا کے جو بیان نہیں ہوتے عام طور پر. انس ابن حارث، مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، زہیر قین، حر ابن یزید ریاحی، علی ابن حر ابن یزید ریاحی، اور کتنے صحابہ ہیں اصحاب حسین جنہوں نے صبح عاشور سے ظہر عاشور اور عصر عاشور تک جنگ کی، جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور اپنی جان جعفری کی بارگاہ میں نظر کرتی. اصحاب کے بعد آقا حسین کے اہل بیت بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا. میں مسلسل عرض کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب تک اصحاب باقی رہے بنی ہاشم میں سے کسی ایک تک کوئی زخم نہیں پہنچا، اور اس کے بعد بنی ہاشم میں بھی علب ترتیب حفظ مراتب کے ساتھ پہلے آل عقیل نے جانے نظر کی، اس کے بعد آل جعفر نے، پھر آل علی کا سلسلہ شروع ہوا. صبح عاشور سے حسین لاشیں اٹھاتے رہے، ظہر کی نماز با جماعت پڑھی ہے حسین نے. ابھی آپ بھی نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، آپ نے نماز جماعت کس اطمینان سے پڑھی ہے؟ تصور کیجئے روز عاشورا سن 61 ہجری حسین نے کس طرح نماز جماعت پڑھی ہے. تمام مناظر بیان ہوتے رہتے ہیں، آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں. میں چونکہ قبل اس کے کہ میری طاقت ساتھ چھوڑ دے، کسی منزل تک بیان کو پہنچانا چاہتا ہوں. نماز ظہر ہوئی اور با انداز نماز خوف ہوئی، با جماعت نماز ہوئی. نماز ظہر کے بعد پھر جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا. روایتوں میں کہ حبیب ابن مظاہر نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے ہیں، یعنی نماز ظہر کے بعد بھی کچھ شہداء اصحاب میں سے ہیں. پھر اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور جب کوئی نہیں رہ گیا، یاد رکھیے گا میرا جملہ کہ مورخ کے بیانات ناکافی ہیں. یہ جو بیان کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہاں ہے، کیسے ممکن ہے. ہاں، معرفت کی نظر پیدا کریں. جب کوئی نہیں رہا تو حسین نے تلوار کھینچی، और बेपनाह जंग की है, बेपनाह जंग की है। यहां तक के लश्कर को इतना पीछे इतना पीछे इतना पीछे करते चले गए हैं कि कूफे की दीवारों से लश्कर टकरा गया। और ये मंजर सैयद सज्जाद देख रहे थे। आप फजाइल नहीं पढ़ रहा हूं मैं, मगर ये चीजें बयान नहीं होती हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। बेपनाह जंग और जिहाद करके आका हुसैन पलटे, एक मतलब खेमे में आए तो आका हजरत सैयद सज्जाद ने कहा, बाबा मैं आपका अजब अंदाज़े जंग देख रहा हूं। सामने बहुत से ऐसे हैं जो आपकी तलवार की जद पे आते हैं, मैं देखता हूँ आप उन्हें कत्ल नहीं करते, दस दस को छोड़ते हैं तो एक एक को कत्ल करते हैं। इमाम ने कहा, बेटा मैं सिर्फ कत्ल थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इस मैदान में भी देख रहा हूँ किसी की नस्ल में कयामत तक कोई मुसलमान पैदा होने वाला है तो उसे नहीं कत्ल कर रहा। क्या रहमत नाफत है हुसैन की। ये हुसैन और सैयद सज्जाद का मुकालमा है। मैदान करबला में हुसैन भी जंग कर रहे हैं तो ये देखकर कि सुलबों में नस्लों में अगर कोई मुसलमान पैदा होने वाला है अल्लाह का सच्चा बंदा तो उसे कत्ल नहीं करते हैं, उसी शकी को कत्ल करते हैं जिसकी नस्ल खाली है ईमान और इस्लाम के नूर से। इसी मौके पर फिर आका हुसैन ने असरार इमामत मुंतकिल किए। आका सैयद सज्जाद से असरार इमामत मुंतकिल किए और बीवियों को रुख्सत किया, रुख्सत करके फिर मैदान का रुख किया। बस अब जब मैदान का रुख किया है तो दर खैमा पर जो आपकी सवारी का घोड़ा था, जब आप उस पर सवार हुए और मैदान में चलने के लिए इशारा किया तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। बहुत से वाकयात छोड़कर मैं अर्ज कर रहा हूं और इस वाकये को भी लोग बाज़ हज़रात समझते हैं ये शायरों की तख्लीक है ये मज़मून, नहीं। आप में से बहुत से हजरात साहिबे औलाद होंगे और छोटे बच्चों की कैफियत आपने देखी होगी। अभी आप चलते हैं, अब इस वक्त आपके पास सवारियों की कारें हैं, गाड़ियां हैं, छोटे बच्चे 3 बरस के बच्चे 4 बरस के बच्चे कभी कभी आके जब आप गाड़ी में बैठ जाते हैं गाड़ी का दरवाजा पकड़ के खड़े हो जाते हैं, हम तो नहीं जाने देंगे। ये रोजमर्रा का तजुर्बा है। बस हुसैन की एक 4 साल की बच्ची थी, जब आका मैदान के लिए रवाना हो रहे थे तो उस आका के फरस ने घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार किया। आका ने उससे डरते दिल फरमाया है, तू मेरा वफादार रहवार है, मुझे मालूम है तू भी थक चुका है, मगर ये हुसैन का आखिरी जिहाद है, इसमें साथ दे दे। घोड़े ने एक मरतबा अपने सुमो की तरफ इशारा किया। आका ने देखा 4 साल की चहीती बच्ची घोड़ों के कदमों से लपटी हुई है। आका उतरे, बच्ची को खूब प्यार किया, रुख्सत किया। आप सोच सकते हैं बच्ची ने क्या सवाल किया होगा। यहाँ मुअर्रिख लिखता है, यहाँ रिवायतों में है, बच्ची ने एक ही बात पूछी, बाबा क्या आप भी मरने के लिए जा रहे हैं। अजरकुम अलल्लाह। क्या बच्ची का शऊर है कि क्या बच्ची का एहसास है, आका गए बेटी को रुखसत करके और फिर बेपनाह जमती है। अब वो जो रिवायत है ना, वो भी मुबालिगा नहीं है, बेपनाह जंग की है। कहते हैं कि फिर निदाए आसमानी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ये उन्हीं मनाजिर में से जो आम मुअर्रिखीन को नजर नहीं आ सकता, जो आम मुअर्रिखीन को नजर नहीं आ सकता। हुसैन ने निदाए इलाही पे लबैक फरमाया और उसके बाद वो जो जिहाद का अंदाज था, वो जो क़िताल का अंदाज था, वो बदल गया। और जैसे ही आका ने जरा सर झुकाया है सर तस्लीम, बिखरी हुई फौजें फिर सिमट आई। और मैं एक जुमला कहता रहा हूँ माजी में, इस जुमले को सैकड़ों सफ़े आप पढ़ेंगे ना तो आप इसकी तस्दीक करेंगे। जो तफसीलात हैं करबला में मक्तल सैयद शहदा की, कोई तरीका कत्ल का ऐसा नहीं है जो आका हुसैन के लिए इस्तेमाल ना किया गया। तलवार से कत्ल किया जाता है ना, कितनी तलवारें थी करबला में। नैजे से कत्ल किया जाता है, तीर से कत्ल किया जाता है, जहर से कत्ल किया जाता है। न जाने कितनी तलवारें और तीर थे जिनको जहर में बुझाकर दुश्मन लाए थे। और अब वो हंगाम था मैदान करबला में कि जिसके पास जो असलहा था बस वो हुसैन की तरफ निशाना कर रहा था। तलवारें उठ रही थी तो हुसैन के लिए, नैजे बढ़ रहे थे तो हुसैन की तरफ, तीर छोड़े जा रहे थे तो हुसैन की तरफ। आका के जिस्म मुबारक पर कितने जख्म वारिद हुए कौन बता सकता है। हाँ, जो चंद चीजें बहुत खसूसियत से जिक्र की गई हैं वो ये है कि आका अपने फरस मुबारक पर थे, एक मर्तबा एक तीर से शोभा आया और आका के सीने पर लगा। आप खूब क्रिया करेंगे आज, खूब मातम करेंगे, मगर मैं आमदन आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि वो लोग जो मक्तल उमूमन नहीं सुनते हैं वो सुने और गौर से सुने, एक एक लफ्ज सुने। असलहों के ताल्लुक से भी मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। बाज़ लोगों ने असलहों पे किताबें लिखी हैं कि किस किस जमाने में, किस किस मुल्क में कैसे कैसे असलहे बनते थे। ये तीर से शोभा जिसे कहते हैं, तीन फल का तीर, ये एक मखसूस तीर होता था जो आगे से मुड़ा हुआ होता था। और ये इस हिकमत से बनाया जाता था कि अगर ये तीर पैवस्त हो जाए और कोई निकालना चाहे तो निकालने ना पाए, और अगर निकाले तो अंदर से कलेजा बाहर आ जाए। ये तीन फलों का तीर आका के सीने पे लगा। जब उमूमन तीर लगता था, उमूमन तीर लगता था तो आप तीर खींच कर फेंक देते थे और मसरूफ जिहाद हो जाते थे, मगर ये जो तीन फल का तीर सीने मुबारक पे लगा तो आप इसे खींच नहीं सकते थे। खींचते तो आका का कलेजा सीने से बाहर आ जाता। आपने करबू से जीन पर जोर देकर तीर को पुष्ट की तरफ से निकाला, यानी जारी हुआ, जैसे भगभगाने लगे, माथे पे तीरा के लगा, उसे खींचा, उस जख्म को फिर हमारे से पोषिता किया, एक तीर गुलू मुबारक पे आके लगा और बस हुसैन जमीन की तरफ झुकने लगे। अजरकुम अल्लाह नहीं कर पाऊंगा। हर शहीद गोले से जमीन पर आता था तो जमीन के और शहीद के दरमियान कोई चीज हायल नहीं होती थी, मगर रिवायतों में आका जब घोड़े से जमीन की तरफ आए हैं तो कुछ देर तक आका का जिसमें मुबारक तीरों पर मुअल्लक रहा, यानी इतने तीर थे पैवस्त कि जिसमें मुबारक जमीन तब तक नहीं पहुंच सकता था। अब फिर और कीजिएगा, उस नातवानी में जब जिस्म का ज्यादातर लहू बह चुका है, हुसैन ने फिर जोर दिया और वो तीर जिस्म में जो पैवस थे वो पुश्त की तरफ से निकल गए। किस कैफियत में हुसैन ने सजदे आखिर किया, किस तरह से हुसैन ने पेशानी जमीन तक पहुंचाई और फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वा तलाका के साथ, मगर हमारे मुल्कों में आका हुसैन के वफादार राहवार की भी शबीह बनाई जाती है। जुलजना, इसकी भी एक अहमियत है, इसकी भी एक अहमियत है। आपको मालूम है घोड़े की अपनी खसूसियतें होती हैं, फिर वो घोड़ा जो खास तौर से तरबियत किया गया हो और वो घोड़ा जो हुसैन ने तरबियत करके अपने लिए मखसूस किया हो, क्या क्या खसूसियतें होंगी उसमें, रिवायत में है, तारीख में है, कुछ कुछ और रिवायतों में है, कुछ उन लोगों ने बयान किया है जिन्होंने वाकई करबला को अपनी आंखों से देखा है। आका हुसैन का ये घोड़ा भी इतना वफादार था, जब इसने महसूस किया कि मेरी पुश्त पे जो सवार है अब वो जमीन की तरफ आ रहा है, तो इसने अपने दोनों पांव जमीन पे टेके, धीरे धीरे झुका, आहिस्ता से हुसैन को पुश्त से उतारा है जमीन पे, और उसके बाद आका का तवाफ करना शुरू किया। अपने मुंह से, अपने दांतों से कुछ तीर हुसैन के जिस्म से घोड़े ने निकाले हैं, कुछ बहने वाले दुश्मनों को अपनी टापों से हलाक किया है, कुछ देर तक हुसैन की हिफाजत की है, और जब इस घोड़े ने देखा कि अब इस जिस्म से इतना लहू बह चुका है, इतना लहू बह चुका है कि दूर तक लहू ही लहू है, उस वक्त इस घोड़े ने अपनी पेशानी खून हुसैन में रंगीन की और खैमागाह की तरफ चला। दरे खैमा पे जो घोड़ा पहुंचा, खैमे के अंदर आवाज गई घोड़े की टाप की, बीबियां बाहर आईं, देखा बागें कटी हुई हैं, घोड़ा खाली है, पेशानी पे लहू है। बीबियों ने घोड़े को हलके में लिया, वाह हुसैना वाह हुसैना वाह अलिया वाह मुहम्मदा की फरियाद बुलंद हुई। कुछ देर तक ये फरियाद बुलंद रही और उसके बाद, बस ये आखिरी फकरा अर्ज कर रहा हूँ इस वक्त, बाकी बयान शाम गरीबा की मजलिस में होगा। परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। बीवियों ने मातम किया है कुछ देर उस घोड़े को अपने हलके में लेकर, मगर फिर एक बीबी मुतवज्जे हुई, ज़ैनब मुतवज्जे हुई, कहा रबाब हुसैन की चहेती बच्ची हलके मातम में नहीं आए, बच्ची का रोना बहुत जरूरी है। पलक के बीबियों ने देखा वो नंगी बच्ची जो घोड़े की टापों से लपट गई थी, वो अब दर खैमा पे खामोश खड़ी हुई है। ये वो बच्ची है कि जिसके हाथों में मशकीजा रहता था और कभी अली अकबर के पास आके कहती थी, भैया अली अकबर सब बच्चे प्यासे हैं, मैं भी प्यासी हूँ, पानी की सभी कीजिए। कभी अब्बास के पास आके कहती थी, अम्मू जान मैं प्यासी हूँ, सब बच्चे प्यासे हैं, पानी की सभी कीजिए। बाबा के पास आके कहती थी, बाबा पानी की सभी कीजिए। ये बच्ची अभी इसे पानी नहीं मिला है, मगर ये बच्ची जिसने पूछा था बाबा के आप भी मरने के लिए तैयार हो गए, अब इस बच्ची को पूरा शऊर है। वाकई करबला में कुर्बानी हुसैन के बाद बच्चों की नफ्सियात भी बदल गई। और इसलिए अब सुनिएगा कि बच्ची ने सवाल किया, बच्ची साकित खड़ी है, खामोश खड़ी है। बीबी आगे बढ़ी, बेटी बाबा गुजर गए, बाबा का मातम कर ले,